संख्या 20 पर चर्चा करेंगे। आप थोड़ा आगे आ सकते हैं। तो कृपया मेरे पीछे दोहराइए, कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहम् एव अपि संपन्न कर्तुम् अर्हसि। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहम् एवम् अपि संपन्न कर्तुम् अर्हसि। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आस्थितः जनकादयः लोकसंग्रहम् एवम् अपि संपन्न कर्तुम् अर्हसि। संपन्न कर्तुम् अर्हसि कर्मणैव आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहम् एव अपि संपन्न कर्तुम् अर्हसि। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् जनकादयः माता में कोई कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहम् एव अपि संपन्न कर्तुम् अर्हसि। इसका अनुवाद और इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार से है, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। इसका तात्पर्य बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद ने दिया है। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री रामचंद्र के श्वशुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला अर्थात भारत के बिहार प्रांत के एक परगना है के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था, अतः ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उसका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक है, जहां पर भगवान नियत कर्मों को क्यों करना चाहिए। पहली बात तो नियत कर्म अर्थात जो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, या फिर ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र है, तो सामान्य जनों के आध्यात्मिक और सामाजिक प्रगति के लिए भगवान ने चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठ गुण कर्मा विभाग श, तो इन चार वर्ण और आश्रम की उत्पत्ति की है। और हर एक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार उस आश्रम और उस वर्ण में रहकर जो भी निहित कर्तव्य बताए गए हैं उनको संपन्न करते भगवान को प्रसन्न कर सकता है। परंतु आज वर्तमान स्थिति में इस वर्णाश्रम पद्धति के अधिकांश लोग खिलाफ है, विरुद्ध है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को शूद्र कहना आजकल एक बड़ी गाली देने जैसे हो गया है ना। अगर किसी कोई कह दे कि तू शूद्र है, तू निम्न है, तू तुच्छ है, तू बेकार है, तो लोग पुलिस थाने चले जाते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे भला बुरा कहा, ऐसा कहा, जाति पक्ष किया इसने। परंतु पहले तो यह समझना चाहिए कि मैं वास्तव में कौन हूं और क्यों भगवान इस प्रकार से चार वर्ण और आश्रम की उत्पत्ति की है। प्राणियों में उनका स्वभाव कभी बदलता नहीं है। शेर शेर जैसा ही रहेगा, बाघ हो या सिंह हो या फिर कोई हिंस पशु हो, कोई भैंसा हो या कोई गधा हो, कोई कुत्ता हो, कोई गाय हो, वास्तव में देखे जाए तो ये चार पैरों वाले प्राणी हैं और ये सभी भी अपना अपना धर्म या अपना स्वभाव कभी भूलते नहीं है। गाय कभी गधे को नहीं बोलती तू गधा है, गधा तो बोले मैं गधा ही हूं, और ना ही गधा कोई गाय को बोले तू गाय, एकदम बेकार गाय है। तो हर पशु, हर पक्षी या कोई भी प्राणी अपने सामान्य स्थिति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार ही जीते हैं। वे कभी एक दूसरे पर कभी पुलिस थाने में केस दर्ज नहीं करते हैं, है ना। फिर जब मनुष्य की बारी आती तो मनुष्य ऐसा क्यों विचार करता है? अगर मनुष्य कहा जाए कि अगर तू दो पैर वाला मनुष्य है लेकिन गधे के समान बेकार सा व्यवहार करता है और कोई आपको गधा कह दे तो आपको इतना बुरा क्यों लगना चाहिए? क्योंकि लोगों को लगता है कि मेरा सामाजिक स्टेटस जो है बहुत ही ऊंचा है, मैं पढ़ा लिखा हूं, अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है, समाज में मेरी इज्जत है, और कोई इस पर अगर दाग लगाने की कोशिश करता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। परंतु व्यक्ति के पूर्व कर्मों के अनुसार उसका एक नियत स्वभाव बन जाता है और वो नियत कर्म जो है वो वर्ण और आश्रम में भगवान ने लिखित मतलब दिया हुआ है। कोई भी इसको अपने बदल नहीं सकता। कौवा भले कितना भी फेयर एंड लवली लगाए, गोरा नहीं बगुला नहीं बनेगा, है ना। आज तक ऐसी कोई क्रीम नहीं निकली है जो कोई काली माता ने लगाई हो। काली माता मतलब जो त्वचा से काली हो, अब दुर्गा जी की बात मत कीजिए। तो कोई भी ऐसी स्त्री हो जो वर्ण से काली हो और ऐसी कोई कॉस्मेटिक क्रीम लगाने से वो गोरी बन जाए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से इस शरीर को बनाया हुआ है। जो जीव इस शरीर को, भौतिक शरीर को धारण करता है, तो जन्म लेते समय उसका वर्ण कैसा होगा, उसका कद कैसा होगा, उसकी शारीरिक रचना कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसे होगा, वो ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय बनेगा, वैश्य बनेगा, शूद्र बनेगा, किस प्रकार का शरीर धारण करेगा, ये जन्म से पहले तय हो जाता है। कर्मों के अनुसार उसी प्रकार के घर में, उसी प्रकार के माता के घर में वो जन्म लेगा। हमें से किसी के इच्छा के अनुसार हमने जन्म नहीं लिया है। अगर ये पूर्व कर्मों के अनुसार अगर निर्धारित हो जाता है तो इस वर्तमान स्थिति में हम हमारे कर्मों को किस प्रकार से बदल सकते हैं? अगर मैं ब्राह्मण के घर में अगर मेरा जन्म हुआ है और ब्राह्मण स्वभाव अगर मेरे पूर्व जन्म कर्मों के अनुसार है तो मैं उसी के अनुसार मुझे कर्म करना चाहिए। कोई क्षत्रिय है तो क्षात्र धर्म को निभाते हुए उसको क्षात्र धर्म का पालन करना चाहिए। अगर कोई शूद्र है तो उसको शूद्र का अर्थात अन्य वर्णों की सेवा में अपना जीवन बिताना चाहिए, इससे उसका कल्याण है। अगर वो ब्राह्मण है तो शूद्र लेकिन ब्राह्मणों जैसा या क्षत्रिय जैसा वैश्य जैसा कर्म करने के लिए जाता है तो उसके लिए एक प्रकार का दंड उसको प्राप्त होगा। परंतु आज अगर ये स्थिति अगर समाज में कही जाए तो लोग इस पर लांछन लगाते हैं, दोष आरोप लगाते हैं और कई बार लोग फिर श्रीमद् भगवद गीता को फिर या मनु संहिता को जलाने का प्रयास करते हैं। शास्त्र जो ये सत्य है उसको जलाने से वो मिटने वाले नहीं है, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। बेहतर है कि हम हमारी आदतों को हमारे स्वभाव को उसके अनुसार ढालने का प्रयास करें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर कही गई है क्योंकि भगवद गीता में अगर आप आगे पढ़ोगे तो भगवान यहां तक कहते हैं कि परो धर्म भयावह। अगर हम हैं ब्राह्मण और हम शूद्र का कर्म करने के लिए जाते तो हमारे लिए भयानक हो जाता है ना। अगर हम ब्राह्मण परिवार में हो या फिर वैश्य परिवार में हो, व्यापारी परिवार में है और हम कर्म करने के लिए जाते क्षत्रिय के समान, तो जैसा गाय अपना स्वभाव नहीं बदल सकती, अपना शरीर को नहीं बदल सकती, अपने कर्म को नहीं बदल सकती, अगर वो शेर के समान दहाड़ने के लिए जाए, कर्म करने के लिए जाए तो क्या होगा? अनुकूल नहीं उसके लिए। या फिर शेर गाय के समान घास खाने के लिए जाए, गाय जैसा कर्म करने के लिए जाए तो क्या होगा? उसके विपरीत है। बेहतर है यह है कि जिस प्रकार से मुझे शरीर प्राप्त हुआ है, जिस वर्णाश्रम में मैं हूं, मुझे उसी के अनुसार मुझे कर्म करना चाहिए। अगर मैं गृहस्थ हूं और सन्यासी जैसा कर्म करने की बात करता हूं तो मेरे लिए हास्यास्पद है, प्रतिकूल है। या कोई सन्यासी, अभी मैं वर्ण के, मैं अभी आश्रम की बात कर रहा हूं, अगर कोई सन्यासी है जो विरक्त है, जिसने घर बार अपने सारे रिश्तेदार को छोड़ दिया है और भगवान के नाम प्रचार में लगा हुआ है परंतु अपने व्यवहार को बदलने की चेष्टा करता है, वो गृहस्थ जैसा लगकर अपना व्यवहार करने लगता है तो उसके लिए बड़ा घोर संकट है। इसलिए बद्ध जीवों को अपने स्थिति से ऊपर उठने के लिए एक तो सामाजिक अर्थात वर्ण और दूसरे आध्यात्मिक अर्थात आश्रम, तो आप एक ही समय पर वर्ण और आश्रम का जीवन जीते हैं, गृहस्थ हो परंतु आप क्षत्रिय हो, जिस प्रकार से अर्जुन के जीवन में देखते हैं। अर्जुन वर्ण से क्षत्रिय था लेकिन गृहस्थ था, तो गृहस्थ धर्म और क्षात्र धर्म के दोनों भी करते हुए एक व्यक्ति को निभाने पड़ते हैं। तो हर एक व्यक्ति वर्ण और आश्रम की दृष्टि से जीवन जी रहा है। तो अपने स्थिति में रहकर जो इसको कहते हैं नियत कर्म अर्थात नियति कहते हैं ना, ये नियति में लिखा हुआ है, भाग्य में लिखा हुआ है। तो हमारे स्वभाव के अनुसार जो हम कर्म कर रहे हैं उसको भगवान को संतुष्ट करने में लगाना चाहिए। इसलिए अत पुंबी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स्वानुतिष्ठ से धर्म से संसिद्धि हरितोषणम। तो वर्णाश्रम पद्धति जो है एक व्यक्ति को समाज में और आध्यात्मिक जीवन में जीने के लिए सुविधा भगवान ने प्रदान की है, और इन कर्तव्यों को निभाते हुए एक बात को कभी भूलना नहीं चाहिए, वही भगवान की संतुष्टि। ये सारे कर्म करते हुए हमें भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। तभी आज जो श्लोक यहां पर कहा गया है, जनक जैसे राजाओं ने नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की है। सिद्धि अर्थात पूर्णता, मतलब हम नियत कर्मों को संपन्न करते हुए भी हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। वास्तव में सिद्धि क्या है? भगवान की संतुष्टि। और यहां पर यह भी कहा गया है, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से उन्हें यहां पर अर्जुन को कहते हैं तुम्हें कर्म करना चाहिए, हम आगे इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे श्लोक संख्या 19 में भगवान अर्जुन को अनासक्त होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं और बतलाते कि इस प्रकार कर्म फल से अनासक्त होकर उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करने वाला व्यक्ति परम अर्थात कृष्ण की प्राप्ति करता है। और आज इस श्लोक में श्री कृष्ण अपनी बात की पुष्टि करने के लिए पूर्ववर्ती आचार्यों जैसे जनक आदि राजाओं का उदाहरण दे रहे हैं। और कृष्ण यहां पर कहते हैं कि जनक आदि राजाओं ने अनासक्त होकर कर्म करते हुए कृष्ण भावनामृत की स्थिति प्राप्त की तथा इस दिव्य स्थिति को प्राप्त करने के पश्चात भी वे अपने प्रजा को शिक्षा देने के लिए आगे कर्म करते रहे। तो एक सुंदर बात यहां पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। जैसे हम भारतीय संविधान में बहुत सारे नियम कानून हम देखते हैं, अलग अलग सेक्शंस वहां पर है, तो ये सारे नियम या जो भी कानून हम देखते हैं ये प्रजा को पालन करने के लिए दिया है ताकि संपूर्ण भारत में एक कानून हो और सभी प्रजा एक जैसा अनुकरण करे, अनुसरण करे। तो भारत में किसी प्रकार का उत्पात या संकट ना आए। और जब कोई घटना घटित होती है तो हम कोर्ट में देखते हैं, जो जज होता है वो न्याय देता है। मान लो किसी ने कुछ अपराध किया हो तो उस धारा के अनुसार या सेक्शन के अनुसार उसको इस नियम का उल्लंघन करने के कारण उसको ये दंड दिया जाता है। और जब दंड उसको दिया जाता है तो कई वर्षों के पश्चात अगर उसी प्रकार के अगर केस उस न्यायालय में आती है तो वकालत करने वाला जो वकील जो होता है वो क्या कहता है कि देखिए जज साहब, 1970 में इसी प्रकार की केस हुई थी और तब उस प्रकार के जज ने इस प्रकार के अपराधी को इस धारा के अनुसार इस प्रकार का दंड दिया था, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप भी इस अपराधी को इसी प्रकार के अपराध के अनुसार उसको यह दंड मिलना चाहिए। तो ये जो वकालत करने वाला व्यक्ति है या जो वकील जो है ये क्या करता है, नियम वही है। 1970 में वही नियम था, आज भी वही नियम है, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्या उदाहरण देता है कि तब उस वकील ने इस प्रकार के अपराध के कारण इस व्यक्ति को इस धारा के अनुसार उसको यह दंड दिया था। तो उदाहरण के साथ जब इसको प्रस्तुत किया जाता है तो सामने वाले व्यक्ति पर इसका प्रभाव होता है। अगर वास्तव में देखें तो भगवान सारे वेदों के प्रमुख है, उत्पत्ति करता है, तो भगवान को उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भगवान एक उदाहरण प्रस्तुत यहां पर क्या करते हैं कि देखो, पहले तो भगवान ने यहां पर कहा कि अर्जुन आपको नियत कर्मों का पालन करना है लेकिन अनासक्त होकर। नियत कर्म अर्थात आप जो भी दैनिक रूप से नियत कर्तव्य कर रहे हो, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के हैं या गृहस्थ ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ के, परंतु कर्म करते समय जो फल उत्पन्न होता है हम फल से आसक्त हो जाते हैं। तो हमें नियत कर्म संपन्न करने हैं लेकिन फल की अपेक्षा न करते हुए, और ये बात को ध्यान में रखना कि सारे कर्म भगवान के चरणों में समर्पित रहे। इससे हम किसी प्रकार के कर्मों के फल को बंधन में हम नहीं पड़ सकते। तो भगवान ने तो कह दिया कि आपको अनासक्त होकर कर्म करना है, अर्थात अर्जुन एक प्रकार से राजा के पद पर है और भगवान अर्जुन से कहते कि देखो अर्जुन, आप क्षत्रिय हो, राजा हो, आपको क्षात्र धर्म का पालन करना है, बस युद्ध करना है, प्रजा की रक्षा करनी है, लेकिन कोई फल की अपेक्षा नहीं करनी है। यह सब कुछ मुझे अर्पित कर, मेरे संतुष्टि के लिए करना है। राजा को वास्तव में नरदेव कहा जाता है। नरदेव अर्थात जो सभी नरों में, मनुष्यों में देवता अर्थात प्रमुख होता है। तो इस पृथ्वी तल पर राजा को नरदेव कहा जाता है, प्रमुख व्यक्ति कहा जाता है, और वो सीधा भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो जब आप प्रतिनिधि हो किसके, भगवान के, तो आपको भगवान की इच्छा और भगवान के संतुष्ट के लिए कार्य करना चाहिए। और अर्जुन को यह उदाहरण भगवान इसलिए प्रस्तुत करते कि अर्जुन आपको नियत कर्तव्य का क्षात्र धर्म का पालन तो करना है लेकिन अनासक्त होकर, क्यों अनासक्त होकर कर्म करना है, इससे आपको समसिद्धि अर्थात जीवन की पूर्णता प्राप्त होगी। और उदाहरण के तौर पर यहां पर भगवान श्री कृष्ण जनक महाराज का उदाहरण देते हैं। श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री श्री गौनिताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो जनक महाराज का उदाहरण यहां पर बहुत ही सटीक है, एक परिपूर्ण उदाहरण है। तो श्लोक के प्रारंभ में भगवान कहते हैं कि कर्मणा एव संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। तो जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से सिद्धि प्राप्त की। अभी नियत कर्म अर्जुन भी कर रहा था और दुर्योधन भी कर रहा था, लेकिन अर्जुन भगवान को प्रसन्न करने के लिए नियत कर्म कर रहा था। शुरुआत में हम देखते हैं कि अर्जुन को युद्ध करने की कोई लालसा नहीं थी। युद्ध किस लिए कर रहे थे, क्योंकि भगवान ने कहा मेरे लिए युद्ध करो, तो कर रहे थे। परंतु दुर्योधन युद्ध कर रहा था भगवान के इच्छा के विरुद्ध। पहले तो भगवान ने कह दिया था कि आप 5 गांव दे दो पांडवों को, वे सुखी से रहेंगे, लेकिन संपूर्ण राज्य उसको चाहिए था दुर्योधन को, और कह दिया कि मैं सुई के नोक के बराबर भी पांडवों को भूमि दान में नहीं दूंगा। राज्य की क्या बात है, 5 गांव तो दूर की बात है। तो भगवान शांति दूत बनकर गए थे ताकि इतना बड़ा युद्ध ना हो, लेकिन दुर्योधन के हट के कारण, जिद के कारण ये बड़ा युद्ध होता है। इसलिए अर्जुन कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, परंतु दुर्योधन जो है अपने क्षात्र धर्म का, नियत कर्मों का तो पालन कर रहा है लेकिन भगवान की इच्छा के विरुद्ध, इसलिए उसको दंड प्राप्त होता है। इसलिए हम राजा है, हम क्षत्रिय है, इसलिए किसी प्रकार से हम राज्य का उपभोग कर सके, ऐसा नहीं है। जब जब क्षत्रियों ने अपने नियत कर्मों का गलत उपयोग किया है, तब तब भगवान ने या भगवान के प्रतिनिधियों ने अर्थात आध्यात्मिक गुरु ने या ऋषियों ने उनको दंड दिया है। जब वेन राजा ने अपना क्षात्र धर्म का गलत उपयोग किया था तो सारे ऋषियों ने उनको मार दिया, नष्ट कर दिया। कंस ने अपना क्षात्र धर्म का गलत उपयोग किया तो भगवान ने स्वयं उसको दंड दिया। तो जहां जहां पर क्षत्रिय अपने क्षात्र धर्म का गलत उपयोग करते हैं और अपने स्वयं के सुख के लिए, लाभ के लिए उसका उपयोग करते हैं, या उसको दंड भगवान स्वयं दंड देते हैं या प्रकृति उसको दंड प्रदान करती है। और जो व्यक्ति अपने नियत कर्तव्यों का पालन करता है, प्रकृति उसको पुरस्कार देती है या साक्षात भगवान उसको पुरस्कार देते हैं। ऐसे हमारी गलत धारणा हो सकती है, भगवान ने हमें क्या किया है, 4 वर्ण और 4 आश्रम दिए हैं, तो ये हमें हमारे कल्याण के लिए, उन्नति के लिए भगवान ने दिए, हमारे भोग के लिए नहीं। बाकी सभी योन में हमें भोग प्राप्त है, परंतु मनुष्य जीवन में हमें उचित कर्तव्य को निर्वाह करते हुए इस भौतिक जगत से मुक्त करके आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए भगवान ये वर्णाश्रम दिए हुए हैं। ब्रह्मचर्य व्यक्ति जीवन पालन कर रहा है तो गुरु के आश्रय में रहकर गुरु की सेवा करते अपने जीवन को पूर्ण कर सकता है। गुरु के निर्देशानुसार कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो गृहस्थ धर्म के जो कर्तव्य है उसको पालन करते हुए, भगवान को प्रसन्न करते हुए इस भौतिक जगत से मुक्त होना है। वास्तव में भौतिक जगत से मुक्त होकर, दुखों से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में जाना, ये सभी वर्णाश्रम पद्धति का मूल उद्देश्य है। परंतु जो व्यक्ति इस वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए स्वयं के भोग के लिए, आनंद के लिए केवल जीवन जी रहा है, मात्र उसको दंड प्राप्त होगा। और यहां पर भगवान अर्जुन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण देते जनक महाराज जी का। भगवान यहां पर अर्जुन को समझाते कि तुम्हें युद्ध मेरे संतुष्टि के लिए करना है, पहली बात तो आपको क्षात्र धर्म निर्वाह करना है। अर्जुन जो युद्ध से भाग रहा था युद्ध छोड़कर, परंतु भगवान ने उसको क्या कहा, आप इस प्रकार से अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकते, आप क्षत्रिय धर्म का निर्वाह आपको करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि युद्ध के पश्चात राज प्राप्त करके आप उसका आनंद उपभोग करो, आप मेरे लिए युद्ध करो, क्योंकि भगवान वहां पर धर्म की स्थापना करना चाहते थे। और एक उदाहरण यहां पर देते जनक महाराज जी का, कि किस प्रकार से जनक महाराज जी ने अपने क्षात्र धर्म का, गृहस्थ धर्म का पालन किया अनासक्त होकर। कर्म में अनासक्ति किस प्रकार से, यहां पर फल से अनासक्ति की बात की जाती है। आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, किसी भी वर्णाश्रम में हो, जो जो कर्म आप कर रहे हो, कर्म से जो भी फल उत्पन्न होता है वो भगवान के चरणों में अर्पित करना है। इसे कहते हैं अनासक्त होना। तो जनक महाराज तो इतने बड़े राजा थे और माता सीता के पिता थे। माता सीता के पिता होने के पश्चात भी अगर देखें तो कोई क्षत्रिय राजा है, घर में कई सारे दास दासियां होती है, नौकर चाकर इत्यादि होते हैं, और महल में कितने सारे प्रकार की संपत्ति सुख साधन होते हैं, अर्थात हर प्रकार का सुख उनके पास है, बड़ा राज्य उनके पास है, धन का कोषागार के उनके पास है। ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को अनासक्त रहना, भोग से दूर रहना बड़ी कठिन बात है। मतलब किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आपके हाथ में बड़ा रसगुल्ला है, आपको केवल देखना है, खाना नहीं है, तो कैसा चलेगा। तो वैसी बात अगर जनक महाराज के जीवन में देखिए, तो जनक महाराज राजा भी थे, राजकाज का भी काम कर रहे, लेकिन अनासक्त थे। तो एक साधु ने इस प्रकार से सुना था कि जनक महाराज इतने बड़े राजा है लेकिन अपने राज्य से, सुख से, परिवार से अनासक्त है। अनासक्ति एक किसी सन्यासी व्यक्ति के जीवन में देखी जाती है, राजा के जीवन में नहीं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब उनको मिलने के लिए उड़ीसा राज्य के राजा थे, उनके नाम थे राजा प्रताप रुद्र। तो प्रताप रुद्र महाराज भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कई बार मिलने का प्रयास करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, एक सन्यासी व्यक्ति का अभिनय निभा रहे थे, और राजा ने कई बार पत्र भेजा था अपने दूतों के द्वारा कि महाराज अर्थात राजा आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन हर बार चैतन्य महाप्रभु उनको ठुकरा देते थे कि मैं एक विषयी व्यक्ति का संग नहीं करूंगा। विषयी मतलब जो हमेशा अलग अलग भोगों में लगा हुआ जो राजा होता है, राजा मतलब सबसे भोगी व्यक्ति। तो महाप्रभु ने कहा कि मैं विषय लोगों का संग नहीं करना चाहता, राजा को बता दो मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। लेकिन प्रताप रुद्र महाराज भले वे राजा थे लेकिन एक सन्यासी व्यक्ति, एक विरक्त व्यक्ति के समान जीवन जी रहे थे। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से दिखाते हैं कि एक सन्यासी को किस प्रकार से भोगी व्यक्ति के संग से दूर रहना चाहिए। तो राजा मतलब एक भोगी व्यक्ति, एक संकल्पना, इसी प्रकार से धारणा होती है। तो इस साधु ने भी जनक महाराज के विषय में सुना था, ये तो बड़े राजा है लेकिन विरक्त सन्यासी जैसे है, ये अपना जीवन यापन किस प्रकार से निर्वाह करते हैं कि राजा होकर भी अपने राजपाट से या फिर सुख से विरक्त रहते हैं। तो केवल एक प्रश्न उनसे पूछा था, जब ये राजसभा में आते हैं तो जनक महाराज कहते कि हे साधु महाराज, मैं आपकी कैसे सेवा करूं। तो साधु ने उनसे एक प्रश्न पूछा था कि मुझे केवल एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, मेरी बड़ी जिज्ञासा है, आप इतने बड़े राजा हैं फिर भी आप राजकाज कैसे करते हैं, और इसके इन दोनों में आप भगवान का स्मरण कैसे करते हो, या भगवान को आप राज्य से अनासक्त और भगवान से आसक्त, थोड़ा कंफ्यूज मुझे लगता है, मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि किस प्रकार से आप अपने जीवन को तालमेल रखते हो। तो राजा बड़े प्रैक्टिकल थे, उन्होंने क्या किया, अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि इस साधु के सिर पर एक बड़े तेल का मटका रख दो, जो तेल जो है उस मटके के पूरे ऊपर तक सिरे तक होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी अगर अपने सिर को हिला दे तो तेल की बूंदे नीचे छींटे नीचे गिर जाए। लेकिन इस जनक महाराज ने कहा था अपने सैनिकों को, अगर इस साधु के सिर पर जो रखा हुआ जो तेल का मटका जो है, अगर इससे अगर एक तेल घी तेल का बूंद अगर नीचे गिरती है तो इसका सिर काट दो। साधु बेचारा जिज्ञासा करने के लिए जाता है, लेकिन आज मृत्यु से गले पर लटक रही थी सिर पर। अगर राजा से दूसरा सवाल पूछे, प्रश्न पूछे, तो शायद मुझे और बड़ा दंड मिल जाए। और साधु बीच में इस प्रकार से विचार कर रहा था कि मैंने बहुत गलत प्रश्न पूछ दिया क्या। तो साधु समझ नहीं पा रहा था कि मैंने इस प्रकार से कैसी गलती कर दी। और जनक महाराज ने कहा था कि पूरे राज्य में इसको घुमाओ, कहीं पर भी अगर इसके मटके से एक बूंद भी नीचे गिरती है तो इसको मार देना। अगर राज्य में घूमते घूमते अगर मेरे राजसभा में आ जाता है इसको जीवित छोड़ दो। तो बेचारा साधु अपने सिर पर बड़ा मटका लेता है और पूरे राज्य में घूमता है। और पहले के जमाने में इस प्रकार से था, अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसे पूरे राज्य में उसको घुमाया जाता था, ये दिखाने के लिए इस व्यक्ति ने अपराध किया है, राजा इसको अभी दंड देने वाला है, मृत्यु दंड, या अलग अलग चौराहे में उसको जाकर उसको पीटा जाता था, ताकि सारे प्रजा को यह शिक्षा मिल सके, अगर इस प्रकार से अपराध किया जाए तो इस प्रकार से दंड भी मिलता है। तो साधु के सिर पर जिन जिन लोगों ने इस प्रकार से मटका देखा तो सभी लोग समझ गए, साथ में सिपाही भी है, हो ना हो इस साधु ने कुछ अपराध किया होगा। तो सभी लोग उस साधु की निंदा करते थे, कोई पत्थर मारता था, कोई गाली गलौज करता था। लेकिन हर समय ये साधु का यही विचार होता था, ध्यान रहता था, मेरे सिर पर जो मटका रखा हुआ है उसे एक बूंद भी तेल का नीचे नहीं गिरना चाहिए, अगर गिर गया तो सिपाही मेरी हत्या कर देंगे। वो बिल्कुल भी जो जो लोग प्रजा उनको ताना दे रहे थे, बोल रहे थे, भला बुरा कह रहे थे, उनकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। तो कई घंटों के पश्चात ये जो साधु है जनक महाराज के सभा में आता है, तब तक एक बूंद भी तेल का नीचे नहीं गिरा था। तो सिपाही उसके सिर से वो मटका नीचे उतारते हैं और जनक महाराज देखते कि ये साधु जीवित यहां तक लौटा है। तो जनक महाराज उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हैं और कहते कि आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने ये नाटक किया था। तो साधु बड़ा चकरा गया कि इस प्रकार से नाटक, इस प्रकार का उत्तर, वो समझ नहीं पाया। तो जनक महाराज ने कहा कि आपने मुझे प्रश्न पूछा था कि मैं राजा भी हूं और भगवान से आसक्त भी हूं, विरक्त भी हूं, तो यह समीकरण किस प्रकार, सूत्र किस प्रकार से आप जीवन में पालन करते हो, इसी का उत्तर देने के लिए मैंने ये आपसे नाटक किया था। मुझे आपको यह समझाना है, जब आपके सिर पर एक तेल का मटका था और मैंने सिपाहियों से कहा था कि जब भी अगर एक बूंद भी नीचे गिर जाए तो इस साधु की हत्या कर देना, तब आप मन में क्या विचार कर रहे थे? और आपको पता है कि जब आप राज्य में घूम रहे थे, आप अपराधी के रूप में घूम रहे थे, और एक अपराधी को प्रजा क्या क्या बोलती है आपको भी पता है। साधु ने कहा, मैंने सुना तो सही लेकिन ध्यान नहीं दिया। क्या कहा? लोग मुझे बोल रहे थे, कोई थूक रहा था, कोई पत्थर मार रहा था, कोई गाली दे रहा था, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे रहा था। मेरा ध्यान कहां पर था? मटके के सिरे पर। और विचार क्या कर रहा था? एक बूंद का, एक तेल का बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। पूरे ध्यान के साथ एकाग्र चित्त से मैं चल रहा था।
ठीक है ठीक
तो जनक महाराज ने उस साधु से कहा कि आपका क्या विचार था, आप क्या महसूस कर रहे थे? पहली बात, वह मृत्यु का हमेशा चिंतन करते थे, और दूसरी बात, लोग उनसे किस प्रकार से व्यवहार कर रहे इसकी ओर वह दुर्लक्ष कर रहे थे। वही बात जनक महाराज ने साधु के मुख से उनको ही सुना दी। तो जनक महाराज ने कहा कि मैं इसी प्रकार से क्या करता हूं, विचार करता हूं। प्रतिदिन मैं मृत्यु का विचार करता हूं, मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो इस भौतिक जगत से सुख दुख से मुझे किस प्रकार से क्यों आ सकता, मुझे रहना है। आज मैं राजा हूं, अगर मरे गलत कर्म के द्वारा मैं रंक या भिखारी भी बन सकता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो जनक महाराज अपने नियत कर्तव्य को पालन करने के लिए बड़े दृढ़ थे, परंतु अनासक्त थे। तो अपने लाभ के लिए, अपने भोग के लिए वो कर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन साथ साथ भगवान की भक्ति या भगवान की सेवा भी कर रहे थे। तो धन संपत्ति होकर भी व्यक्ति भगवान की सेवा में लगे रहना, ये बहुत ही विरले लोग होते हैं। तो जनक महाराज उनमें से एक थे, और इसलिए भगवान यहां पर ये उदाहरण भी देते हैं। तो साधु ने जब उनसे प्रश्न पूछा कि आप राजा भी होकर इस प्रकार से अनासक्त कैसे हो, तब जनक महाराज उनको एक साक्षात्कार भरा अनुभव देते हैं। और साधु भी समझ जाता है कि जैसा मैं पूरे राज्य में घूम रहा था, सिर पर क्या है, तेल का मटका, और तेल के मटके से एक बूंद भी नीचे ना गिरे, इस पर मेरा पूरा ध्यान था। तो जनक महाराज जी कहते कि मेरा पूरा ध्यान, मेरा पूरा चित्त जो है भगवान के चरणों में लगा रहता है। मैं सारे प्रकार के कर्म कर रहा हूं, मैं क्षत्रिय भी हूं, राजा भी हूं, गृहस्थ भी हूं, सारे प्रकार के कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा हूं, लेकिन मेरा पूरा जो मन जो है भगवान के चरणों में है, इसलिए मैं सारा राज काज करते हुए भी अनासक्त हूं। लोग काम तो करते हैं, लेकिन अपने कर्म के प्रति, अपने पद के प्रति, अपनी प्रतिष्ठा के प्रति आसक्त रहते हैं। तो जनक महाराज जी का उदाहरण यहां पर भगवान बहुत सुंदर रूप से देते हैं। तो हमने कई बार जनक महाराज जी के बारे में सुना है या इसका उल्लेख भी हम करते हैं। तो वास्तव में जनक एक पदवी है, एक पद है, जिस प्रकार से यहां पर दिया है कि जनक शब्द का जो अर्थ है जन्म देने वाला। तो जनक महाराज जी का पूर्व इतिहास बहुत सुंदर है, जो मैंने आज शाम को पढ़ा था। तो श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है, नवे स्कंद में। तो नवा स्कंद जो है इसमें सारे कई सारे राजाओं की परंपराओं का वर्णन है, कुल परंपरा का वर्णन उसमें किया गया है। तो उस परंपरा में कौन से राजा आते हैं, आगे उनका किस प्रकार से वंश बढ़ेगा, तो बहुत कुछ उसमें वर्णन आता है। तो राजा इक्ष्वाकु का ये वर्णन आता है, जिसमें उनके 100 पुत्रों का वर्णन आता है, और इनमें से एक थे महाराज निमि। तो निमि महाराज के बारे में कहा जाता है कि एक अलग किस्म के राजा थे, और महाराज इक्ष्वाकु इनके वंश में वशिष्ठ मुनि ये उनके कुल पुरोहित थे। और निमि महाराज ने देखा कि वास्तव में निमि महाराज इक्ष्वाकु महाराज एक शिष्य और पुत्र समान दोनों भी थे, और वशिष्ठ मुनि उनके कुल पुरोहित होने के कारण सारी प्रकार की पूजा अर्चा जो होती थी वो संपन्न करते थे। और निमि महाराज ने देखा कि वशिष्ठ मुनि कुछ अलग ही प्रकार की पूजा अर्चा कर रहे, उनको पसंद नहीं आई उनकी पद्धति को देखकर। तो निमि महाराज ने क्या किया, अपने कुल पुरोहित को छोड़कर अन्य किसी पुरोहित को बुलाकर उनसे पूजा अर्चा करवा ली। और जब वशिष्ठ मुनि ने देखा कि इनके कुल का कुल पुरोहित मैं हूं, और मुझे छोड़कर इसने दूसरे कुल पुरोहित से क्या किया, भगवान की पूजा अर्चा संपन्न कर ली, तो वशिष्ठ मुनि को बड़ा क्रोध आता है, और क्रोधवश क्या करते हैं, निमि महाराज को शाप दे देते हैं कि तुम्हारी तत्काल मृत्यु हो जाए। और मृत्यु से पहले निमि महाराज भी, वे भी भगवान के भक्त थे, शक्ति संपन्न राजा थे, तो उन्होंने भी शाप दे दिया वशिष्ठ मुनि को कि आप भी, आपको भी मृत्यु प्राप्त हो जाए। तो दोनों भी इस प्रकार से एक दूसरे को शाप दे देते हैं और दोनों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन वशिष्ठ मुनि क्या करते हैं, मित्र और वरुण देवताओं के द्वारा उनका भी फिर से स्वयं उनका पुनर्जन्म हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि निमि महाराज भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, तो सभी देवता बड़े प्रसन्न थे उनकी सेवा से, तो सभी देवता उनका एक वरदान प्रदान करते हैं। वे वरदान इस प्रकार से प्रदान करते कि आप सभी प्राणियों के आंखों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा आप जीवित रह सकते हो। कैसे, मान लीजिए सभी प्राणी अपने पलके झपकते हैं, इसका मतलब क्या है, वह प्राणी जीवित है। तो आप उन पलकों के झपकने जो कि क्रिया है ना, इस क्रिया के माध्यम से आप सबकी दृष्टि से देखोगे, जीवित रहोगे। लेकिन निमि महाराज का जो मृत शरीर वहां पर पड़ा हुआ था, तो ऋषि मुनि क्या करते हैं, उनके शरीर का मंथन करते हैं। जैसे वेन राजा का शरीर का मंथन करते ऋषि मुनि, तो वहां से महाराज पृथु और अर्ची देवी का जन्म होता है, प्राकट्य होता है। वैसे निमि महाराज के शरीर का मंथन करते हैं, मृत शरीर का, तो उनमें से एक व्यक्ति उत्पन्न होते हैं जिनका नाम था जनक। तो समस्त ऋषि ने निमि महाराज के मृत शरीर का मंथन करके एक बालक को उत्पन्न किया, और उस बालक का नाम रखा गया जनक। तो उस बालक ने निमि महाराज के नष्ट हुए वंश को जन्म दिया, अतः उनका नाम जनक सार्थक हुआ। तो वहां पर लिखा गया है, इस प्रकार से वर्णन आता है कि निमि महाराज का वंश वहां पर समाप्त हो गया था। भले इक्ष्वाकु महाराज के 100 पुत्र थे, तो हर पुत्र का एक अपना अपना वंश निर्माण हो जाता है। तो निमि महाराज की मृत्यु के पश्चात उनका वंश आगे नष्ट हो गया था, परंतु इस बालक ने क्या किया, उनके वंश को फिर से जीवित किया, जन्म दिया, इसलिए उनका नाम हुआ जनक। इसके अतिरिक्त इस बालक का नाम मिथिल भी हुआ, क्योंकि वह शरीर के मंथन से उत्पन्न हुआ था। आगे चलकर यही जनक मिथिला नगरी को उत्पन्न करते बसाते हैं, तो आज भी मिथिला शायद नेपाल में है ऐसा लगता है मुझे। तो मिथिला के नाम से वो जाना जाता है, तथा उसका नाम वैदेह भी हुआ क्योंकि वह निमि महाराज के शरीर से उत्पन्न हुआ था जो विदेह हो चुका था, विदेह अर्थात मर चुका था। तो मृत शरीर से अर्थात निमि महाराज ने उस शरीर को छोड़ दिया था, तो उसके उस घटना के कारण उस जनक को वैदेह नाम से जाना जाता है। इस राजा जनक की वंश परंपरा में जितने भी राजा हुए सभी जनक कहलाए, अर्थात भिन्न भिन्न नाम के राजा हुए परंतु सबको जनक उपाधि दी जाती है। तो हम जनक महाराज, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहां पर जो जनक शब्द का उच्चारण करते हैं ना, वो वास्तव में माता सीता के पिता जनक, जो आज अभी हमने उदाहरण चर्चा किया, सभी जनक राजाओं में माता पिता माता सीता के जो पिता जनक हुए वे प्रसिद्ध है। तो श्री कृष्ण द्वारा इस श्लोक में कौन से जनक का उल्लेख होता है, उस जनक का नाम क्या है? शिरध्वज। तो वास्तव में माता सीता के पिताजी का नाम जो है जनक कहा जाता है, लेकिन उनका वास्तविक नाम है शिरध्वज। तो निमि महाराज के मृत शरीर से उत्पन्न हुए जनक, जो पहला बालक जनक जन्म हुआ, उनके चलते चलते उनके वंश परंपरा में सीता माता के जो पिताजी हैं जनक महाराज, जिनका नाम है शिरध्वज, इनका नंबर आता है 21वां, तो इस परंपरा में वे आते हैं। तो इन्हीं शिरध्वज जनक जी के, जिन्हें अनासक्त होकर अपने नियत कर्म किए थे और भगवान श्री राम को प्रसन्न किया था, तो भगवान श्री कृष्ण यहां पर इन्हीं शिरध्वज जो जनक महाराज है इनका उदाहरण देते हैं। जो साधु ने उनकी परीक्षा ली थी या जिज्ञासा की थी कि आप राजा होकर भी इस प्रकार से अनासक्त कैसे कर्म करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी भगवान के भक्त होने के नाते या स्वयं को उदाहरण से भी सिखाते हैं और भक्तों को भी ये इस प्रकार से प्रेरित करते हैं कि आप इस संसार में रहते हुए भी संसार के न होकर आप कर्म करो, अर्थात आप गृहस्थ हो तो गृहस्थ जीवन के सारे कर्तव्यों का निर्वाह करो, पत्नी है, बच्चे हैं, बाकी रिश्तेदार है, सबके प्रति आपको क्या है, जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी होना और अनासक्त होना ये महत्वपूर्ण बात है। आप जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हो, पालन कर रहे हो, लेकिन आप परिवार के प्रति आसक्त हो तो यही आसक्ति आपको बंधन कहलाती है, आपको बंधन को बंधन में फंसा सकती है। तो जो जो लोग गृहस्थ जीवन में जीवन जीते हैं परंतु परिवार के प्रति आसक्त हो जाते हैं तो इस जगत में उनको फिर से जन्म लेना पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि आप परिवार का पालन पोषण कीजिए, बच्चों की शिक्षा है, बाकी संस्कार है, सब कुछ कीजिए, लेकिन आप उनमें आसक्त मत रहिए। इसलिए वर्णाश्रम पद्धति में एक बहुत सुंदर बात बताई जाती है, 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य जीवन अर्थात गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, ब्रह्मचर्य जीवन उनको सिखाया जाता था। फिर 25 वर्ष से लेकर 50 साल तक आपको गृहस्थ जीवन जीना है अगर आपकी इच्छा है तो, और 50 वर्ष के बाद क्या करना है, वानप्रस्थ जीवन को प्रारंभ करना है, अर्थात पारिवारिक आसक्ति को छोड़कर आपको वन में जाकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है, तपस्या करनी है। जब आप इस प्रकार से तपस्या में परिपक्व बन जाते हो फिर आपको संन्यास ग्रहण करना है। संन्यास अर्थात सब कुछ पूर्णतः भगवान के सहारे। तो धीरे धीरे पारिवारिक जीवन से या शारीरिक जो भी हमारी आसक्ति है, पारिवारिक आसक्ति हो शारीरिक आसक्ति हो, इससे मुक्त होकर हमें भगवान के चरणों में आसक्त बनने के लिए यह हमें आध्यात्मिक जीवन सिखाया जाता है। प्रभुपाद जी कहते कि आजकल ऐसा है कि लोग पारिवारिक जीवन को छोड़ना नहीं चाहते, बच्चे घर में रखना नहीं चाहते, लेकिन बूढ़े लोग जो घर छोड़ना नहीं चाहते। तो पहले लोग वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करते थे, लेकिन आज लोग क्या करते हैं, वृद्धाश्रम जीवन स्वीकार करते हैं। तो बच्चे घर में नहीं रखते हैं तो उन्हें कहां भेज देते हैं, वृद्धाश्रम में, तो प्रकृति हमें क्या करती है, आगाह करती है कि आप इस भौतिक जगत के जो नियम है उनको आप पालन करना सीखो। समय समय पर हमें जीवन में एक प्रकार का बोध हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूर्ण हो गई हैं तो हमें वहां से हमें बाहर निकलना चाहिए। हम देखते हैं कि पांडवों ने क्या किया, जब परीक्षित महाराज बड़े हो गए, पूरा राज पाट जो था उनके हवाले छोड़ दिया और कहा कि अभी हम उत्तर दिशा की ओर, हिमालय की ओर जा रहे हैं। किस लिए? आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। और पांडव, इस प्रकार से कहा जाता है कि पांडव जब अपने राजपाट को त्याग रहे थे, देखिए जिस राज्य को प्राप्त करने के लिए पांडव ने इतना घमासान युद्ध किया था जो आज तक इतिहास में याद किया जाता है, ऐसे राज्य को कुछ वर्षों के पश्चात छोड़ दिया और पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। परीक्षित महाराज को कहा कि आप इस राज्य को संभालो, हम जा रहे हैं। किस लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं धृतराष्ट्र महाराज के जीवन में। धृतराष्ट्र महाराज अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहते, राज्य को छोड़ना नहीं चाहते थे, और कई बार विदुर जी ने उनको गाली दी, भला बुरा कहा कि भीम के टुकड़ों पर पल रहे हो, फिर भी धृतराष्ट्र महाराज उस राजमहल को छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन कहते कि जब समय आता है तो व्यक्ति सयाना हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते कि प्रकृति हमें सिखाने से पहले हमें खुद सीखना चाहिए कि समय समय पर हमें प्रकृति से सीखना चाहिए, देखना चाहिए। अगर धृतराष्ट्र महाराज अगर वही घर में पड़े रहते तो उनकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती थी। अगर आप श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद पढ़ते हैं तो धृतराष्ट्र महाराज किस प्रकार से घर का त्याग करते हैं, महल का त्याग करते हैं और वन में जाकर तपस्या करते हैं और अपने तपस्या की अग्नि से स्वयं के शरीर को नष्ट भी करते हैं और स्वर्ग में चले जाते हैं और उन्हीं के चरणों का अनुसरण करते हुए गांधारी भी जाती है, कुंती महारानी भी जाती है। तो इसे कहते हैं अनासक्त जीवन। आप पारिवारिक जीवन जी रहे हो या फिर ब्रह्मचर्य जीवन जी रहे हो या फिर संन्यास का जीवन जी रहे हो, किसी भी वर्णाश्रम में रहिए परंतु अपने कर्तव्यों को सिर्फ कर्तव्य के रूप में निभाइए, आसक्त मत होइए। यही शिक्षा वास्तव में यहां पर भगवान देना चाहते हैं। और इस शिक्षा को देते समय, इस उपदेश को सुनाते समय भगवान श्री कृष्ण यहां पर जान पूछकर जनक महाराज जी का उदाहरण देते हैं और जनक महाराज जी अपने उदाहरण से सिखाते हैं कि किस प्रकार से मैं भगवान के चरणों में आसक्त हूं, राज्य का पालन भी कर रहा हूं, प्रजा का पालन भी कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने राज्य में आसक्त नहीं हूं। जब समय आएगा, छोड़ते समय हमें दुख नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी स्वरूप का मैं कुछ भी किसी प्रकार का त्याग कर रहा हूं तो त्याग करते समय अगर मुझे दुख हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कि मैं आसक्त हूं, क्योंकि जब मैं आसक्त तो इसलिए मुझे दुख हो रहा है छोड़ते समय। अगर मान ले अगर मेरे जेब से अगर बटवा चोरी हो जाता है और बटवे में अगर मान लो 5,000 रुपए हो तो दुख लगता है ना, परंतु तो बटवे में अगर पैसे ही ना हो तो क्या होगा, चलो कोई बात नहीं दूसरा बटवा ले लेंगे। तो आसक्ति अगर हमारे जेब में है तो हमें दुख होता है। अगर आसक्ति ही नहीं है, रहे या ना रहे हमारे पास जो कुछ भी है, तो हमें कोई खेद नहीं होता है, तो हम आसानी से हम उसको त्याग सकते हैं। तो प्रभुपाद जी भक्तों को इस प्रकार से सिखाती, आप पारिवारिक जीवन जिए, किसी प्रकार के वर्ण और आश्रम में रहिए, अपने कर्म फलों के प्रति के भी आसक्त मत बनिए। जो भी कर्म कर रहे हो भगवान के संतुष्टि के लिए कीजिए। यहां पर जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं कि अर्जुन आप नियत कर्तव्यों का पालन करो, युद्ध करो, लेकिन मेरी संतुष्टि के लिए। दुर्योधन भी युद्ध कर रहा है लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए, मेरी संतुष्टि के लिए नहीं, इसलिए वह कर्म बंधन में फंसने वाला है, उसको दंड प्राप्त होने वाला है। यह उदाहरण मैंने कई बार भी दिया है कि जब हम कुछ कर्म करते हैं, फल प्राप्त करते हैं और खुद भोगते हैं तो कर्म फल दुखदायी ही होता है, लेकिन उसी फल को जब हम भगवान को समर्पित करते हैं तो भगवान उस फल को शुद्ध कर देते हैं, दुख से मुक्त कर देते हैं। फिर अलग अलग प्रकार के हम कर्म करते हैं, माताएं घर में अलग अलग कर्म करते हैं, खाना बनाते हैं, घर को साफ सुथरा रखती है या अन्य पारिवारिक जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। तो प्रभुपाद जी कहते कि आपको सभी प्रकार के कर्तव्यों को निभाना है, लेकिन उसमें एक चीज आपको ऐड करनी है, जमा करनी है, उसको क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता में भगवान एक बहुत सुंदर बात बताते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जो व्यक्ति कर्म कर रहा है और सोचता है कि इसका फल का भोक्ता मैं हूं, तो भगवान क्या कहते हैं, मूढ़ा, उसको मूर्ख बताते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं कि कर्म के द्वारा जो फल उत्पन्न होगा, अगर खुद भोगता है और खुद को श्रेय देता है कि मैं इस कर्म का करता हूं, तो उसके लिए और बंधन का कारण बन जाता है, जन्म का कारण बन जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति यही सोचता है कि भगवान मैं जो भी कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं, या जो भी हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है ना। अगर हम ये सोचते हैं, ये मानते हैं और पढ़ते भी हैं कि भगवान की कृपा के बिना, भगवान की इच्छा के बिना एक घास का तिनका भी हिल नहीं सकता, तो हम जो कर्म कर रहे हैं, हमारे हाथ पैर हिल रहे, कार्य कर रहे हैं, ये किसकी कृपा से हो रहा है, ये भगवान की कृपा से ही हो रहा है। तो जब भगवान की कृपा से सब कुछ क्रियाएं हो रही है और जो भी फल उत्पन्न होता है, हम भगवान को धन्यवाद देना छोड़कर उसको भोगते हैं, तो इसका दंड हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए। इसलिए भगवान गीता में कहते कि यत करोषि यदस्नासि यत जोहसि यदासि यत तपस्यसि कौन्तेय मत कुरुष्व मदर्पणम्। आप जो भी क्रियाएं कर रहे हो, खा रहे हो, तपस्या कर रहे हो, सो रहे हो, बोल रहे हो, जो भी कर रहे हो, जितनी भी क्रियाएं हमसे होती है, सब कुछ भगवान को समर्पित इसलिए करना चाहिए क्योंकि भगवान की कृपा से हो रहा है। सारी क्रियाएं भगवान की कृपा से हो रही, लेकिन इच्छा हमारी होती है ना। आप क्रिया करने की इच्छा जरूर करो, लेकिन जो क्रिया के द्वारा उत्पन्न होने वाला फल है, वो भगवान को धन्यवाद के रूप में अर्पित करना चाहिए। इससे एक महान और श्रेष्ठतम चीज घटित होगी, वो क्या है, कर्म बंधन से मुक्ति। कर्म बंधन और कर्म बंधन से मुक्ति, ये कई बार आपको गीता में ये शब्द आएंगे। जो लोग खुद के लिए करता है, सिंपल सी एक सीधी सी बात है, जो स्वयं के भोग के लिए करता है वो कर्म बंधन है, और जो वही क्रिया जब हम भगवान के संतुष्टि के लिए करते हैं, वो कर्म बंधन से मुक्ति है। तो भगवान ये बात हमें समझाई है, आप किसी भी वर्णाश्रम में रहिए तो हर एक वर्ण और आश्रम में अलग अलग हमें नियम बताए गए हैं, अलग अलग कर्तव्य बताए गए हैं, उन कर्तव्य से चूकना नहीं है, उनको निश्चित रूप से निभाने हैं, परंतु अनासक्त होकर जो भी करना है भगवान के संतुष्टि के लिए करना है। इसी क्रिया को वास्तव में अनासक्ति कहते हैं। और भगवान यहां पर अर्जुन को स्पष्ट संकेत देते हैं कि अर्जुन आपको इसी प्रकार से कर्म करना है। आपने अपने क्षात्र धर्म से आप विमूढ़, मतलब विन्मुख हो सकते हो, और नायक क्षात्र धर्म को निभाते हुए इस जो भी आपको फल प्राप्त होगा आपको पूर्ण रूप से भोगना है, आपको सब कुछ मेरी प्रसन्नता के लिए करना है। अगर आप इस प्रकार से कर्म करोगे तो आप भी जनक महाराज जैसे महात्माओं की गिनती में आप गिने जाओगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगले श्लोक में भगवान, अगला बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण श्लोक है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यद यद आचरित श्रेष्ठ, और वहां पर विस्तार से बताते हैं क्यों जनक महाराज का उदाहरण देते हैं यहां पर भगवान, कि जनक महाराज ने अनासक्त होकर प्रजा को शिक्षा देने के लिए कर्म किया है। जनक महाराज के बारे में और एक विशेषता बताई जाती है, वे भगवान के श्वशुर थे और भगवान के मान भक्त भी थे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त को इस भौतिक जगत के वर्णाश्रम धर्म को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, केवल भगवान की संतुष्टि के लिए निष्काम कर्म करता है ना, वह वर्णाश्रम धर्म से परे चला जाता है। उसको वर्णाश्रम धर्म के किसी नियम को पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर भी यहां पर जनक महाराज भगवान के शुद्ध भक्त होते हुए भी एक गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य निभा रहे और एक राजा का कर्तव्य निभा रहे, क्यों? और इन दोनों कर्तव्य को निभाते हुए भी वे अनासक्त कैसे हैं? इसलिए भगवान यहां पर उदाहरण देते हैं। और अर्जुन और हमको भी शिक्षा भगवान ये समझाते यहां पर कि हमें भी कोई, यहां पर आप में से कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई क्षत्रिय हो सकता है, कोई वैश्य शूद्र भी हो सकता है, कोई ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ सन्यासी भी हो सकता है। हम किसी भी वर्णाश्रम में रहे, उनका कर्तव्य, उन नियमों का कर्तव्य का पालन तो निश्चित रूप से करना है, लेकिन जनक महाराज के समान अगर इस प्रकार से उनका उन कर्तव्यों का पालन करते अनासक्त होकर, तो यहां पर एक बहुत ही सुंदर शब्द भगवान बताते कि समसिद्धिम, यह शब्द यहां पर प्रयोग किया गया है। सिद्धि का अर्थ होता है पूर्णता। तो सामान्य रूप से भगवान को प्राप्त करना या जीवन में सिद्धि प्राप्त करना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन अगर अनासक्त होकर कर्म करते हैं भगवान के संतुष्टि के लिए, तो यह सिद्धि भी हमें आसानी से प्राप्त हो सकती है। व्यक्ति का जीवन जब कब जटिल बनता है, कठिन बनता है, जब वो भगवान के आदेश का उल्लंघन करता है। श्रीमद् भगवद गीता को आप लीजिए, अर्जुन भगवान के आदेशों का पालन नहीं कर रहा था, मतलब उससे पहले भगवद गीता सुनने से पहले उसका जीवन पूरा दुख से भरा हुआ था, और यहां तक भले मेरी कीर्ति नष्ट हो जाए, अर्जुन की कीर्ति मतलब क्या है, पूरे त्रिजगत में उसकी कीर्ति फैली हुई थी, अर्जुन के धनुष के सामने देवता भी नहीं टिक पाएंगे, इतना बाहुबल और युद्ध कला उसके पास थी। इतना बड़ा ख्याति प्राप्त किया हुआ व्यक्ति अभी कहता कि अगर मेरी कीर्ति भी नष्ट हो जाती, मुझे जान से भी मार देती भी चलेगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कहते बोलना बहुत आसान है, जब तुम करने जाओगे, जब लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, मृत्यु से भी बदतर तुम्हारा जीवन हो जाएगा। इसलिए बेहतर यह है आपको युद्ध करना है, क्योंकि आप क्षात्र धर्म आपने स्वीकार किया है, यह आपका धर्म है, तो आपको उस क्षात्र धर्म का निर्वाह करना है कर्तव्य के रूप में। और जैसे शास्त्र में कहा गया कि सारे वर्णाश्रम का पालन तो करना है, लेकिन महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या रखना चाहिए, समसिद्धि महरितोषणा। जब हम भगवान को केंद्र में रखते हुए इन कर्तव्य का पालन करते हैं, तभी हमारा वो क्षात्र धर्म हो या फिर ब्राह्मण धर्म हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या फिर आप गृहस्थ ब्रह्मचारी हो, आपका जीवन सफल हो सकता है। कोई ब्रह्मचारी है और केवल ब्रह्मचर्य जीवन का पालन कर रहा है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान के संतुष्टि के लिए कार्य नहीं कर रहा है, तो उसका ब्रह्मचर्य जीवन बेकार है। कोई गृहस्थ है, बहुत ही नियम पूर्वक और जिम्मेदारी पूर्वक अपने गृहस्थ जीवन का पालन कर रहा है, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों का ठीक से पालन कर रहा है, देखरेख कर रहा है, लेकिन भगवान के संतुष्टि के लिए कर्म नहीं कर रहा है, तो उसका गृहस्थ जीवन में बेकार है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म पद्धति का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है, उसमें भगवान को प्रसन्न रखते हुए अनासक्त होकर कर्म करना यह महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी? माता की आसक्ति और माता का कर्तव्य, ये दोनों भी अलग अलग हैं। अगर अपने बच्चों का लालन पालन कर रही है, प्रभुपाद जी एक सीधी व्याख्या लिखते हैं और आप माताएं भी और आप सभी यहां पे ग्रस्त लोग इसको स्वीकार करते हैं, बच्चों को जन्म देने के पीछे क्या भावना होती है, क्या उद्देश्य होता है? स्वार्थ है ना, और दूसरा क्या स्वार्थ होता है? बुढ़ापे की लाठी सहारा बने। अभी तो आप जवान हो लेकिन बुढ़ापे का विचार करते हो, तो बुढ़ापे का अभी आप बंदोबस्त कर रहे हो, है ना? तो बच्चों को जन्म देने के पीछे भावना क्या होती है? एक तो हमारा वंश आगे चलना चाहिए जैसे आपने कहा, और दूसरी भावना क्या होती है? बुढ़ापे के सहारा बने। तो नहीं, मैं आपको यहां पर क्यों बोल रहा हूं कि बुढ़ापे की लाठी बने, सहारा बने, ये भी आसक्ति है ना। मतलब आपको बुढ़ापे तक आपको जीना है, सुकून से जीना है, लेकिन बहुत कम लोग ये विचार कर पाते कि इस बच्चे का लालन पालन हमें इसलिए करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं आप गृहस्थ बनिए, बच्चों को जन्म दीजिए, लेकिन क्यों? इसको भगवान का भक्त बनाइए। अधिकांश गृहस्थ क्या विचार करते हैं, ये मेरे बुढ़ापे की लाठी बने, भक्त नहीं बने। लोग कहते कि घर घर में शिवाजी हो लेकिन मेरे घर में नहीं। वैसे ही है कि अगर ये भगवान का भक्त बन जाएगा तो फिर ये पैसे क्यों कमाएगा, कम कमाएगा, आसक्त नहीं होगा। लोगों को सब पता होता है कि भक्त बनना मतलब अनासक्त होना चाहिए इन भौतिक चीजों के प्रति, भले माता हो या कोई पिता हो या कोई बंधु हो, कोई भी हो। अगर हमारा स्वार्थ है तो स्वार्थ के पीछे बड़ी आसक्ति होती है, और वह आसक्ति क्या करती है, हमें अंधा बना देती है। अगर आप माता हो पिता हो, अगर आपने बच्चों को जन्म दिया है तो भावना यही होनी चाहिए, यह भगवान का अंश है, इस भौतिक जगत में कई सारे जन्म इसने बिताए हैं। तो माता पिता का प्रमुख कर्तव्य स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं, माता न सस्यात जननी न सस्यात या पिता न सस्यात गुरु न सस्यात। माता पिता गुरु या राजा, जब आप बड़े पोजीशन पद पर आप कार्य कर रहे हो, आपको तब तक अधिकार प्राप्त नहीं होगा जब तक आप अपने ऊपर अपने ऊपर जो निर्भर लोग हैं उनका भगवान का भक्त ना बना दो। आप माता पिता हो तो बच्चों को पहले भगवान का भक्त बनाइए। सबसे पहला महत्वपूर्ण कर्तव्य आपका यह है, वो हमारी चिंता करे या ना करे। आप बच्चों पर निर्भर है मतलब भगवान पर निर्भर नहीं है, ये सीधी बात है। अगर भगवान गीता में कहते कि योगक्षेम वहां भी हम अनन्य चिंतयंतो म्याम, जो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता है भगवान उसकी चिंता करते हैं, तो हमें भगवान पर भरोसे रहना चाहिए। बच्चों को एक नहीं दस बच्चों को जन्म दीजिए, गलत बात नहीं है, लेकिन सभी बच्चों को आप भगवान का भक्त बनाइए। उनको इस भौतिक जगत में मत रहने दीजिए, उनको आध्यात्मिक जगत में जाने का रास्ता बताइए। अगर इस प्रकार से विचार करके आप बच्चों को जन्म देते हैं तो आपका माता पिता होना धन्य है। रही बात माता यशोदा की, वो तो शाश्वत भगवान की माता है, वो लीला अलग बात है। आसक्ति लेकिन सही व्यक्ति के प्रति आसक्ति है ना। जो भौतिक जगत की माता पिता है वो भी खुद भगवान से आसक्त बने और बच्चों को भी आसक्त बनाइए। यशोदा माता तो परम सत्य आसक्त ही, उनकी आसक्ति तो एकदम पक्की है, ठीक है ना। इसलिए जो भी माता पिता यहां पर है, बनने वाले बने हुए, उनका ये की कर्तव्य होना चाहिए कि हमें सच्ची माता वास्तविक माता पिता का कर्तव्य क्या है कि अपने ऊपर निर्भर बच्चों को भगवान का भक्त बनाए। अगर वो भगवान का भक्त बन गया ना तो अपने आप ये बुढ़ापे की लाठी या सहारा अच्छा बनेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे माता पिता भी भगवान के भक्त है, तो भगवान के भक्तों की मुझे अच्छी सेवा करनी चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को भी यही कहा कि आप घर में जो भी पारिवारिक सदस्य लोग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, ठीक है ना। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।